السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر یعنی عظمت، شرف، قدر و قیمت والی رات، شان والی رات، کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام راتوں سے زیادہ قدر و منزلت عطا فرمائی. اس رات میں کیا گیا عمل آپ کے اندازے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اجر میں. پورے سال کی کسی رات میں بھی آپ اگر عبادت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ نہیں رکھے گی جو اس رات کی عبادت کا مقام ہے. لہذا انسان کو اس رات کے لیے تلاش کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس میں بھرپور عبادت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ کسی انسان کو اس رات کی عبادت مل جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے آخری عشرے میں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رات میں عبادت کرتے تھے، یا صرف طاق راتوں کی عبادت کرتے تھے، یا ساری رات جاگتے تھے، یا سو جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال تک رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے. ایک سال اعتکاف نہیں کر پائے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. اور اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مین اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت پائی جا سکے، اس کو حاصل کیا جا سکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آخری 10 راتیں رمضان مبارک کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے. یعنی مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنی محنت کے ساتھ آپ کی اور دنوں میں عبادت نہیں ہوتی تھی. آپ تہبند مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت میں، یعنی پوری کوشش کرتے تھے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بیویوں سے نہیں ملتے تھے. ویسے بھی جب اعتکاف انسان کرتا ہے تو مسجد میں ہوتا ہے، بیویوں سے الگ ہوتا ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ عبادت میں کوشش کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ کی تو پچھلی اگلی ساری خطائیں معاف ہو چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھی کرتے تو آپ کے تو درجات پہلے ہی بلند تھے. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے ان راتوں میں، اور بالکل اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لیتے تھے، عبادت الہی کے لیے خود کو وقف کر دیتے تھے، دوسرے کام چھوڑ دیتے تھے. اعتکاف میں آپ دیکھتے نا، انسان الگ ہو جاتا ہے ہر چیز سے، دنیا کے ہر کام سے الگ ہو کے ایک طرف کو بیٹھ جاتا ہے، صرف اللہ سے لوگ لگاتا ہے. تو جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں، چاہے 10 دن کا نہ بھی کر سکتے ہوں، وہ سنت تو 10 دن کا ہے، لیکن اگر آپ 3 دن کا کر سکیں، 4 دن کا، جو آپ کی طاقت ہو 2 دن کا کر لیں، لیکن اگر بالکل نہیں بھی کر سکتے تو بھی ان 10 راتوں کو ضرور جاگ کر عبادت کیجیے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. اور जैसे कि हमें पता है कि हजार महीनों से भी बेहतर इस एक रात की इबादत है, हजार महीनों से। हजार महीनों का मतलब है 30,000 रातें, 30,000। यानी सिर्फ एक रात की मेहनत का अजर आपको 30,000 रातों से ज्यादा का मिल रहा है, यानी 30,000 गुना से ज्यादा अजर। ऐसे ही समझे कि एक बंदे की माहाना तनख्वाह अगर 1 लाख है और उसको उसी 1 महीने की मेहनत के बदले में 3 अरब से भी ज्यादा अदा किए जाए, और बल्कि उस यानी ये तो बेहतर है उनसे, 1,000 महीनों से बेहतर है। इक्वल नहीं है, बराबर नहीं, बेहतर है। तो 1 लाख की तनख्वाह वाले को 30,000 गुना बढ़ाया जाए तो 3 अरब बनते, और 3 अरब से भी ज्यादा अदा किए जाएं और उसको ये कहा जाए कि बस तुमने 1 महीना काम करना है, अब हमें जैसे 1 रात की बात है, तो कौन है जो इसको छोड़ेगा? अल्लाह अकबर। तो लिहाजा इस रात में अपनी बाकी तमाम मसरूफियात को छोड़ के इसको ऐसे कर लें कि आपके सर पे सवार हो कि ये 1 रात है जिसमें मुझे जागना है, और बल्कि खुद ही नहीं अपने घर वालों को भी जगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये कि आप अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। और अगर हम अपने घर वालों को जगाएंगे तो ये सुन्नत भी हम जिंदा करेंगे। 1 रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, फरमाया आज की रात कितने ही फितने खोल दिए गए और कितने ही खजाने अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए। यानी इस उम्मत के लिए बहुत सारे फितने भी खुल गए हैं और बहुत से खजाने भी अता हुए। तो फिर फरमाया कि इन हुजरों में सोने वालियों को जगाओ, यानी उम्महातुल मोमिनीन को, और उनसे कहो दुनिया में बहुत सारी लिबास पहने हुए औरतें कयामत के दिन नंगी होंगी। इसके जहाँ जहाँ बहुत से माने उलमा ने किए हैं, वहां पे एक माना ये भी किया है कि दुनिया का लिबास यही है ना, माल, ओहदे, स्टेटस इंसान का, कि फलां फर्स्ट लेडी है, फलां वजीर आजम की बीवी, फलां बादशाह की बेटी, फलां की बहन। तो उस दिन ना कोई नबी की बीवी, ना कोई किसी की रिश्तेदार, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी के कुछ कुछ काम नहीं आएगा। इंसान का सिर्फ अपना अमल काम आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से भी फरमाया था कि ऐ फातिमा, अपने आप को खुद बचाओ जहन्नम से, मैं कयामत के दिन तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता। और आप देखें ये नेकियां जो हैं, शायद इतनी आज हमारे नज़दीक इनकी कदरों कीमत नहीं है, लेकिन कयामत के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा कि काश मेरी एक नेकी में भी इजाफा हो जाए, काश मुझे कहीं से एक नेकी कोई दे दे। एक एक नेकी के ऊपर मीजान का पलड़ा ऊपर और नीचे चला जाएगा, एक एक नेकी पे। और ये नहीं मैं कह रही कि बड़ी नेकियां, छोटी से छोटी नेकी भी, यानी जर्रे के बराबर नेकी भी अगर जहां तुल रही है और उसका भी वजन है जर्रे के बराबर, हत्ता के हदीस में आता है जूं के अंडे के बराबर भी उस अमल का भी वजन होगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि 1,000 महीनों से ज्यादा की इबादत का अजर मिल जाए। कि अगर 1 रात है, 1,000 महीनों से ज्यादा मतलब 83 ईयर्स और 4 मंथ से ज्यादा की इबादत का अजर मिल सकता है। और 83 ईयर्स तो कम लोगों की उम्र होती है, इतनी तो लोग पूरी पूरी जिंदगी जी के भी इतना इबादत नहीं कर सकते, 100 साल की भी जिंदगी जी लें, 83 ईयर्स से ज्यादा की इबादत का मतलब ये है कि 10 साल तो इंसान के वैसे ही बचपन में गुजर जाते हैं, मगर उसके बाद कितने साल वो इबादत करता रहे, मुसलसल करता रहे, तो तब भी ये बेहतर है उससे। और 83 प्लस ईयर्स की इबादत से ज्यादा बढ़ के इसका सवाब होने का मतलब यह है कि ये एक एक घंटा जो है हमारा, ये तकरीबन 10 साल की इबादत से बेहतर है। 1 मिनट की इबादत 58 दिनों की इबादत से बेहतर है। और एक सेकंड इस रात का 23 आवर्स की इबादत से बेहतर है। कहां हमसे 24 घंटे इबादत होती है, इसका एक एक सेकंड इतना कीमती है। एक सेकेंड भी कहीं बात करने की जरूरत नहीं है, एक मिनट भी जाया करने की जरूरत है। 58 डेज कौन इबादत कर पाता है हमसे? ये 10 दिन का इतकाफ नहीं होता, तो 1 घंटा 10 साल की इबादत। लिहाजा जहां हम अपनी जिंदगी में कितनी ऐसी बार ऐसे मौके आए कि रात को बुखार हो गया या पेट में दर्द ऐसा उठा कि पूरी रात ही करवटें बदलते रहे, जागे रहे, कितनी दफा मौके ऐसे आए। एयरपोर्ट्स के ऊपर रातें गुजरी क्योंकि फ्लाइट आधी रात के बाद होती। कई कितने ही ऐसे मौके जिंदगी में आए कि शादियों पे पूरी रात गुजर गई, फजर हो गई। और कितनी बार ऐसा भी होता है कोई प्यारा दूर से आया होता है और बातें करते करते सारी रात गुजर जाती, फजर की अजान होती तो पता चलता है कि अच्छा सुबह भी हो गई। बहुत सारी रातें हम ऐसी गुजारते हैं जो जाग के गुजारते हैं, तो क्या यही रातें भारी हैं? कोई मुश्किल भी नहीं। और ये भी याद रखिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि कोई शायद रातों को जागने का कंपटीशन है कि कौन ज्यादा देर जागे। अगर आप जाग रहे हैं और इबादत नहीं कर रहे तो इस जागने का कोई भी फायदा नहीं। अगर आप गपशप कर रहे हैं, फोन पे बिजी हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये इबादत नहीं है। चाहे सारी ही रात आप जागते रहे, इसका कोई फायदा नहीं। बात है कि इबादत करनी है, और इबादत में हर तरह की इबादत करनी है। कुराने पाक भी पढ़ना है, कयाम भी करना है, नवाफिल भी अदा करनी है, सज्दे भी लंबे लंबे करने हैं, फिर आपने तस्बीहात भी करनी है, दुआएं भी करनी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतकाफ बैठे थे, आपकी इबादत का हमें नहीं पता कि क्या क्या आपने इबादत की, मगर ये हमें पता चलता है जरूर कि जो इस रात में कयाम करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा कयाम जरूरी करें, उसके अलावा और भी इबादत करें। और जैसे कि आपको पता है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि अगर मुझे ये रात मिल जाती तो मैं क्या मांगू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ुनी। तो ये कलिमात हमारी जुबान से हटने नहीं चाहिए इन रातों में, कि अल्लाह ताला को उसके अफू होने का हम वास्ता दें कि अल्लाह तू तो अफू है, तू गुनाहों को ऐसे मिटा देने वाला है कि उनका नामो निशान खत्म हो जाए। अल्लाह ताला गफूर भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है, तवाब भी है, मगर अफूफ का दर्जा जो है ना सबसे ऊपर है। गफ्फार है गुनाहों को ढांप देने वाला, तवाब है तौबा की तौफीक देने वाला और तौबा को कबूल करने वाला, सत्तार है गुनाहों पे पर्दे डालने वाला, मगर वो आफूफ है गुनाहों को मिटा देने वाला, डिलीट डिलीट कर देने वाला। तो हम उसको उसकी इसी सिफत का वास्ता देते हैं कि तू तो है ही आफूफ और तुझे ये बात पसंद भी है, तुझे माफ करना अच्छा लगता है, बस तू हमें माफ कर दे। तो हमें इन रातों के अंदर इसी मेहनत, शौक, लगन के साथ अल्लाह ताला से मांगना है ताकि हमारी बख्शिश हो जाए, इसकी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जब पूछा था कि या रसूल अल्लाह आप हमें कयामत के दिन याद रखेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा 3 घाटियों में तो कोई भी नहीं किसी को याद रखेगा। जब पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, इसी तरह जब किताब दी जाएगी, इसी तरह जब मीज़ान कायम किया जाएगा, तो ये बड़े कड़े मरहले हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे फिसल जाएंगे। तो अपने अमल को मजबूत कर लें, अपनी नेकियों को बढ़ा लें, उस दिन पुल सिरात क्रॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नेकी होगी जो पार करा सकेगी। इसी तरह मीजान में ये नेकी ही है जो उसको भारी कर देगी, जिससे निजात मिल सकेगी। इसी तरह किताब में ये नेकी ही होगी तो दाएं हाथ में मिलेगी। तो एंड में बात यही आ जाती है कि नेकियां जमा कर लें, नेकियां जमा कर लें। जिस वक्त सुस्ती आने लगे ना, एक बात आपको बताती हूँ, जब सुस्ती आने लगे, राज की बात है, अपने सामने सोचें कब्र का गड़ा कि मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। इस अंधेरे घड़े में अगर मैं नेकी ना लेकर गई तो सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है। मुझे इसको रोशन करना है, यहां पे मैं बिल्कुल अकेली होंगी, कोई भी नहीं होगा। फिर कौन मुझे यहां पे मदद देगा? आप देखेंगे, आपको हिम्मत आ जाएगी, आप देखेंगे, आपको लगन महसूस होगी, ताकत आ जाएगी कि नहीं मुझे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।